آیسو ناصری مینو لوڑ تری گر گیا میں طوفان وچ.
خداوند کا اطمینان اور تسلی آپ سب کے ساتھ ہو. بائبل مقدس میں ایمانداروں کے لیے بہت سے لقب نام خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے، جیسے مسیح کی کلیسیا، مسیح کی دلہن، خدا پاک روح کے رہنے کی جگہ، خدا کے چنے ہوئے لوگ، خدا کے برگزیدہ لوگ، یا پھر جیسے کہ مسیح کا بدن. اس لیے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، بہت سے ناموں کے ساتھ ساتھ بائبل مقدس میں ایمانداروں کو کہا گیا ہے شاہی کاہنوں کا فرقہ، یعنی کہ خداوند یسوع مسیح بادشاہوں کا بادشاہ اور ہم اس کے فرقے کے اس کے لوگ یعنی کاہن. ہر ایک ایماندار کو بائبل مقدس شاہی کاہن کہتی ہے. سو جب کبھی بھی ہم خدا کی حضوری میں آئیں، تین باتوں کو یاد رکھنا بہت ہی ضروری ہے. پہلی بات یاد رکھیں، خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کی پرستش اس کے پرستار روح اور سچائی سے کریں. اگر ہماری زندگی میں گناہ ہیں، وہ زبانی گناہ ہو سکتا ہے، وہ دماغی گناہ ہو سکتا ہے یا پھر عملی، ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ہمیں دھو کر پاک اور صاف کرے اور ہماری تمام گندگی کو دور کرے، تاکہ جیسے وہ پاک ہے ہم اس کی پاک حضوری میں ٹھہر سکیں، اس کے حضور آ سکیں. دوسری بات، خدا زندہ ہے. بائبل مقدس کہتی ہے کہ اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچا نہ سکے، اور اس کا کان بھاری نہیں ہو گیا کہ سن نہ سکے. خداوند یسوع مسیح کہتا ہے مانگو تو تم کو دیا جائے گا. ہمیں اس سے دوسری بات اس کی حکمت اور دنائی مانگنی ہے، تاکہ اس کے کلام کو سمجھنے کی خدا سے سمجھ اور حکمت مانگیں. کیونکہ پالوس رسول کہتا ہے جب وہ دعا کرتا ہے کہ میری یہ دعا ہے کہ تمہارے دلوں کی اور تمہاری عقل کی آنکھیں کھل جائیں، تاکہ تم خدا کی اس قدرت اس محبت کو جانو جو تمہارے لیے موجود ہے. اور تیسری بات، خداوند خدا سے کہنے کی ضرورت ہے کہ خداوند میں تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لوں تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. سو پہلی بات، خدا روح ہے. ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کسی قسم کا کوئی گناہ، فکر، بوجھ ہمارے ذہن میں تو نہیں. دوسری بات، خدا بہرا نہیں، خدا سنتا ہے، وہ زندہ ہے. اسے پکارنے کی ضرورت ہے حکمت اور دنائی کے لیے، تاکہ جو کچھ ہم سیکھیں اسے سمجھ کر اپنی زندگی میں جگہ دینے والے بنے. اور تیسری بات، خداوند مجھے کلام پر عمل کرنے کی قوت اور طاقت دے. سو آئیں ہم خدا کے حضور جھکیں اور خداوند یسوع مسیح کے زمینی ان تمام واقعات میں سے جو واقعات درج کیے گئے ہیں، آج ہم چوتھے معجزے پر غور کریں گے کہ یسوع مسیح نے ساسو ماں جو پترس کی ساسو ماں تھی اس کو شفا دینے کے بعد کیا کیا. آئیں ہم جھکیں اور دعا کریں اور خدا سے اس کی حکمت اور دنائی مانگیں. خدا باپ، تیرا کلام جو بے تاثیر نہیں لوٹتا، آج کا جو بیج کا چھٹا تیرے کلام کا ہماری دلوں کی زمینوں پر لگے وہ 100 گنا پھل لائے اور ابلیس اسے چرانے والا نہ بنے، بلکہ ان معجزات کے وسیلہ سے خداوند یسوع مسیح میں ہماری خدا خدا ایمان کی ترقی ہو، ہم یسوع پر ایمان رکھیں اور دوسروں کو تیرے پاس لانے والے بنے. یسوع کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین. یسوع مسیح نے بہت سے معجزات کیے زمین پر جو نہیں لکھے گئے، لیکن جو لکھے گئے ہیں جو یسوع نے کیے ہیں وہ 37 ہیں، لیکن اس میں سے ہم آج چوتھا معجزہ دیکھیں گے. میرے ساتھ نکالیں لوکا کی انجیل 4 باب. لوکا کی انجیل 4 باب، ہم اس کی 40ویں آیت سے 41ویں آیت میں یہ حوالہ پڑھیں گے، اور یہاں پر ہم سیکھیں گے کہ یسوع مسیح نے کیا کیا. آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، متی کی انجیل، مرقس کی انجیل، لوکا کی انجیل اور یوحنا کی انجیل، ये वो चार अनाजील हैं जो यीशु मसीह की पैदाइश से लेकर मुर्दों में से जी उठने और आसमान पर उठाए जाने के बारे में क्या देती हैं? तालीम देती हैं। बहुत से वाकयात हैं जो लिखे गए हैं, यानी कि यीशु मसीह की जिंदगी के तमाम वाकयात। इस वाक्य को जो हम देखने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं, मेरे साथ जरा देखें, फिर हम इस पर गौर करते हैं। लूका की इंजील 4 बाप उसकी 40वीं आयत। और सूरज डूबने के वक्त वो सब लोग जिनके हाथ तरह तरह की बीमारियों के मरीज थे, उन्हें उसके पास लाए और उसने उनमें से हर एक पर हाथ रखकर उन्हें अच्छा किया, और बदरूहीं भी चलाकर और ये कहकर के तू खुदा का बेटा है बथेरों में से निकल गई, और वो उन्हें झिड़कता और बोलने ना देता था, क्योंकि वो जानती थी कि ये मसीह है। आज हम इस हवाला में से चंद एक बुनियादी बातें सीखेंगे। पहली बात, मौजजा। यीशु मसीह मौजजात का खुदा है। वो अजीब अजीब काम करता है जो इंसानी सोच, इंसानी कुव्वत और ख्याल से क्या है, बाहर है। इसीलिए यीशु मसीह को क्या कहा गया है? खुदावंद खुदा और खुदा का बेटा कहा गया है, यानी कि वो जिस्म में खुदा है। यीशु नाम में इतनी कुदरत है कि उस जैसा कोई नाम इस जमीन पर नहीं बख्शा गया। उसके नाम से ना के दोजक से लोग निजात पाकर जन्नत में जाते हैं, बल्कि अजीब अजीब काम होते हैं। मैं उसकी गवाही देना चाहता हूं। आज से तकरीबन बहुत साल पहले एक खानदान, मुस्लिम खानदान था, और उसका बाप दुबई में काम करता था, बड़ा दौलतमंद, और उसका एक ही बेटा था। उसको दौरे पड़ते थे, वो उसे मिर्गी का दौरा पड़ता था, अचानक कहीं ना कहीं पर वो गिर जाता था और उसे होश नहीं आती थी कई कई दिन। और मैं जानता हूं, याद है कि हम जब प्रेयर ग्रुप था नौजवानों का पुरानी बस्ती में, जोरावाला की पुरानी क्रिश्चियन कॉलोनी है, उसमें हमारा ग्रुप होता था। हम ज्यादा दुआ में और रोजे में और खुदा के कलाम में वक्त गुजारते थे। अगर आप खुदा यीशु मसीह के साथ ज्यादा करीबी रिश्ता चाहते हैं तो रोजा, दुआ और बाइबल मुकद्दस का मुताला बहुत ही अहम बातें हैं। हम यही करते थे। हम सब नौजवान दुआ कर रहे हैं, खुदावंद खुदा के हजूर उसकी प्रस्तुति कर रहे हैं। बहुत से अजीब काम खुदा कर रहा था। इस खानदान को, जो मुस्लिम फैमिली थी, बाप दुबई में है, माँ उसकी कुजरावाले के रहने वाली थी, और वो नौजवान यहाँ आरववाला में अपने रिश्तेदारों के पास आया है छुट्टियों के लिए, दौरा करने के लिए, मिलने जुलने के लिए। और वो नौजवान जो उस अपने रिश्तेदार को लेकर आया, वो मोहल्ले में क्या चलाता था? केबल चलाता था। वो जब जब पैसे इकट्ठे करने के लिए आता था तो दुआ सुनता था बड़े गौर से, और उसने देखा था, सुना था कि यहां पर बड़े अजीब अजीब काम होते हैं, लोग शिफा पाते हैं, लोगों की बीमारियां दूर होती हैं। तो वो अपने रिश्तेदार को लेकर आया और उसने क्या कहा? उसने कहा कि जी ये बीमार है, इसे बचपन से दौरे पड़ते हैं, ये दवाई खाता है तो ठीक रहता है, अगर नहीं खाता तो इसका हाल बहुत बुरा होता है। तो मुझे याद है कि मैंने उससे पूछा, क्या तू यीशु पर ईमान रखेगा कि यीशु तुझे शफा दे? उस नौजवान ने, जो तकरीबन 17-18 साल का था, उसने कहा जी मैं खुदा यीशु पर ईमान रखूंगा कि वो मुझे शफा दे सकता है। तो उस वक्त के बाद जब हमने दुआ करना शुरू की, दुआ की, तो उसका उसका जिस्म, उसने बताया कि फूल की मानद हल्का हो गया। वो एक दिन आया, 2 दिन आया, 3 दिन आया, और हमने उससे यही कहा कि आइंदा से तुमने दवाई, जो दौरे की दवाई है, वो नहीं खानी। अजीज, और खुशखबरी की बात यह है कि वो नौजवान को उसके बाद दवाई उसने छोड़ दी, उसे कभी भी दौरा नहीं पड़ा। यीशु मसीह के नाम में इतनी कुव्वत और ताकत है। आज वो नौजवान अपने बाप के साथ दुबई में है, वहां पर वो ट्रक चलाता है, और ये जिंदा गवाही है। यीशु मसीह अजीब अजीब काम करता है, और यहां पर हम यही देखते हैं। अभी 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 हमने देखा था पिछले सबक में कि यीशु मसीह ने पतरस की सासू माँ को शफा दी है, और सूरज डूबने के वक्त वो सब लोग जिनके हाथ तरह तरह की बीमारियों के बीमार थे उन्हें उसके पास लाए, और उसने उनमें से हर एक पर हाथ रखकर उसे अच्छा कर दिया। आज मुझे नहीं पता कि आप कौन सा रोल या हिस्सा अदा कर रहे हैं, या तो फिर आप बीमार हैं या फिर बीमारों को लाने वाले यीशु के पास वो लोग हैं। यहां पर हमें दो लोगों का ग्रोह नजर आता है, जिन्होंने सुना कि यीशु ने मौजजा किया है, पतरस की सांस को ठीक कर दिया। वो सब जब सूरज डूब गया, जब शाम हुई, तो लोगों को जिनके घरों में बीमार थे उनको उन्होंने लाना शुरू किया। और जब मरीज वहां पर आए हैं जो बदरूग्रस्त है, आगे हम देखते हैं, जो बीमारियों में तरह तरह की बीमारियों में मुबतला है, फालज की हो सकती है, खून हो सकता है, फोड़े हो सकते हैं, गुर्दों की बीमारी हो सकती है, चल नहीं सकते, अंधे हो सकते हैं, और फिर जिस्म की बीमारी, बहुत सी बीमारियों के बारे में लिखा है कि तरह तरह की बीमारियों के मरीज थे उन्हें उसके पास, यानी यीशु के पास लाए। और यहां पर यीशु मसीह ने क्या किया है, उन पर हाथ रखा है, अपना हाथ। हाथ बहुत दफा रखने का मकसद यही है, जैसे मिसाल के तौर पर जब किसी डीकन को या एल्डर को मखसूस करते हैं तो उन पर हाथ रखे जाते हैं कि खुदावन की बरकत उन पर ठहरे। सो यीशु ने अपना हाथ बढ़ाकर उन पर अपना हाथ रखा और उन्हें अच्छा कर दिया। सो आज मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि आप कौन सा किरदार अदा कर रहे हैं, बीमार हैं या बीमारों को लाने वाले हैं? क्योंकि उस नौजवान ने जिसने ये सुना था कि इस बस्ती में जो दवाइया ग्रुप है वो दुआ करते हैं और यीशु मसीह के नाम में मौजजात होते हैं, वो नौजवान बीमार को लाने वाला जरिया था और वो बीमार शिफा पा गया। आज आप यीशु मसीह के लोग होते हुए या तो फिर बीमार हैं या फिर बीमारों को यीशु के पास लाने वाले लोग हैं। आपसे ये सवाल है कि आप कौन से हिस्से में गिने जाते हैं, क्योंकि अगर आप बीमार हैं तो यीशु मसीह आपको शिफा दे सकता है। वो बीमारी गुनाह की हो, शराब की हो, सिगरेटों की हो, बीड़े की हो, चाहे वो गुनाह जुआ हो, कर्जा लेने की या गलत फैसले करने की या औरतों को देखने की या झूठ बोलने की या गालियां देने की, कोई भी वो मर्ज हो, यीशु मसीह शफा दे सकता है। लेकिन हालत क्या है, शर्त क्या है, यीशु पर ईमान रखना होगा। बगैर ईमान के यीशु को, खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। बगैर ईमान के कुछ भी नहीं होगा। इसलिए अगर आप बीमार हैं तो यीशु मसीह आपको शफा दे सकता है। औलाद नहीं हो रही, यीशु मसीह औलाद दे सकता है। औलाद की बेलादी को वो औलाद की औलाद वाली बनाने की कुव्वत और ताकत रखता है। अगर ईमान मुर्दा है तो वो आपके ईमान को जिंदा कर सकता है, क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना यीशु मसीह के कलाम से। और आगे क्या लिखा है, और बदरूहे भी चलाकर और ये कहकर के तू खुदा का बेटा है बथेरों में से निकल गई। आज बड़े अफसोस से बात ये कहना पड़ती है, बदरूहे जानती हैं कि यीशु कौन है, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते कि यीशु कौन है, वो किस तरह पैदा हुआ, उसने जमीन पर क्या कुछ किया। मेरे इन पैगामात का भाई और बहनों तैयार करने का मकसद यही है कि आपका ईमान बढ़े, आप लोगों को बताने वाले बने कि यीशु मसीह है जो आपको शफा दे सकता है, ना कि वो लोग बने हमें नहीं पता, हाँ तेती वाला जो पीर है वो ठीक कर सकता है, या कब्रस्तान चले जाओ वहां पर एक बाबा है आपसे ये पैसे लेगा या वो हदिया लेगा। अजीजो, अपने आप को पहचाने कि हम किसके बुलाए हुए और किसके नाम से चुने गए हैं। हम उसके लोग हैं जिसने कायनात को पैदा किया है और उसका नाम यीशु मसीह है। हर एक चीज उसके कहने के वसीला से पैदा हुई है। और क्या लिखा है, बुद्रुहें चलाकर, चला चला कर, शर्मा कर नहीं, जैसे बहुत दफा बहुत दफा ईमानदार शर्माते हैं मुझे चाय नहीं मिलेगी तो वो इनकार करते हैं, शायद मेरी दोस्ती टूट जाए वो इनकार करते हैं, ऐसा नहीं करना। बदरूहें चला चलाकर ये कहकर कहती हैं कि तू खुदा का बेटा है और बथेरों में से निकल गई। और यीशु मसीह बदरूहों को क्या करता है, झिड़कता है। वो बीमारियों पर, तूफानों पर, मौत पर, जिंदगी पर, हर एक चीज पर इख्तियार रखता है, इसीलिए वो खुदा का बेटा है। बदरूहें जानती हैं कि वो मसीह है, मसा किया हुआ, चुना हुआ। इसलिए आज आपसे ये सवाल है कि आप अपनी जिंदगी में उसकी गवाही दें, छोटे से लेकर बड़े तक सब बताएं कि यीशु कौन है। जिनको नहीं पता उनको बताएं कि वो सब कुछ कर सकता है, बगैर ईमान के यीशु को आना, पसंद आना नामुमकिन है। इससे पहले कि इस पैगाम को खत्म करूं, मैं चाहता हूं कि यह हवाला आपके लिए पढ़ूं, पुराने अहदनामा में से जबूर 103 उसकी पहली आयत। जबूर 103 उसकी पहली आयत में यूं लिखा है, ये हमें कहने की जरूरत है, जैसे दाऊद कहता है, ऐ मेरी जान खुदावन को मुबारक कह, जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कह। ऐ मेरी जान खुदावन को मुबारक कह और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर, वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है, वो तेरी जान हलाकत से बचाता है, वो तेरे सर पर शफकत व रहमत का ताज रखता है, वो तुझे उम्र भर अच्छी ऐसी चीजों से आसूदा करता है, तू अकाब की मानद अज सर नौजवान होता है। खुदावन सब मजलूमों के लिए सदाकत और अदल के काम करता है, उसने अपनी राहें मूसा पर और अपने काम बनी इसराइल पर जाहिर किए। आज इस जबूर को जब हम पढ़ते हैं तो दाऊद उसकी मुबारकबादी, उस मुबारक हाली, उसे मुबारक कहते हुए, इसे बाबरकत कहते हुए कहता है, वो बीमारियों से, वो अजीब अजीब काम करता है, वो मुझे अकाब की मानद जोर देता है, वो खुदा वो है जिसने अपनी राहें मूसा पर जाहिर की और अपने काम बनी इसराइल पर। बनी इसराइल पर कितने काम किए, जाहिर अजीब अजीब, बहरे कुलजम को दोता ही कर दिया ताकि वो बीच में से गुजर जाए, मिस्र में 10 आफतों को भेजा, मिस्र के अंदर रहते हुए खुदा ने उनके लिए अजीब अजीब काम किए। आपके लिए भी खुदा ने बहुत से अजीब काम किए हैं, उनको याद करने की जरूरत है, दूसरों को बताने की जरूरत है कि यीशु मसीह के नाम में क्या कुछ हो सकता है। ये आपकी गवाही है। आज इस मोजजे को आप तक बयान करने का मकसद यही है कि सुना हुआ कलाम आपके लिए और दूसरों के लिए बरकत का बायस बने। इसलिए अजीजो, जाएं और सब कौमों को जाकर यीशु मसीह के बारे में बताएं, अपने पड़ोसियों को बताएं, अगर कोई बीमार है तो उसको यीशु के पास लाएं, ठीक जिस तरह इन लोगों ने जब सुना तो वो यीशु के पास आए हैं। पतरस की सांस को उसने शफा दी है और धूम मच गई है सारे शहर में, और बहुत से बीमारों को, तरह तरह की बीमारियां, सब लोग उसके पास आते हैं और उनको वो क्या देता है, शिफा देता है। सो खुदावन खुदा की किसी नेमत को फरामोश ना करे, वो हमारी तमाम बीमारियों को क्या करता है, दूर करके शिफा देता है। आए हम खुदा के हजूर झुकें और दुआ करें। खुदा बाप, आज सुनने वालों के ईमान की तरक्की के लिए दुआ करना चाहता हूं कि सबका ईमान बढ़ा, ताकि हम पालूस की तरह, ताकि हम सैलास की तरह, ताकि हम पतरस की तरह, ताकि हम यूहन्ना की तरह, ताकि हम खुदा खुदा मरियम की तरह तेरी गवाही देने वाले बने और तेरे अजीब अजीब कामों को दूसरों को बताएं कि तू जिंदा है, तू मुजजात का खुदा है। खुदावंद, अरवाला कलीसिया के लिए, तमाम मुल्क पाकिस्तान के लिए और इसराइल के लिए और खुदावंद अमरीका के तमाम मसीही खानदानों के लिए बरकत चाहता हूँ, बरकत चाहता हूँ, सबको छू बड़ी बरकत दे। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगता हूँ, आमीन। फिर मिलेंगे खुदावंद में, खुदावंद आप सबके साथ हो।